ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रमुख योजनाओं और पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार और कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
गुजरात की पटोला और बांधनी से लेकर असम की मेखला और गमूसा तक, मध्य प्रदेश की महेश्वरी और चंदेरी से लेकर ओडिशा की संबलपुरी तक, उत्तर प्रदेश के बनारसी रेशम से लेकर तमिलनाडु के कांजीवरम और तेलंगाना के पोचमपल्ली इक्कत तक, भारत एक समृद्ध हथकरघा विरासत का देश है और हैंडलूम हमारी न सिर्फ विरासत है बल्कि हमारी पहचान भी है। वर्ष 1905 में आज ही के दिन स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसी घटना की याद में हर वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 2015 में प्रधानमंत्री ने इसे आयोजित किया था। ये आयोजन पहली बार 2015 में किया गया था। विनय जी, आज 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। भारत में हथकरघा या हैंडलूम की एक विशाल, समृद्ध और सदियों पुरानी परंपरा है और साथ ही इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व भी है। हमारी अर्थव्यवस्था में हथकरघा क्षेत्र का योगदान कितना महत्वपूर्ण है?
अनुभा जी, आपने ठीक कहा। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, पूरी इकोनॉमिक आस्पेक्ट इसका काफी विस्तृत है। अगर देखें, हथकरघा जो उद्योग अभी फैला हुआ है, इसमें कम से कम 1,75,000 एमएसएमई जो हैं, छोटे और लघु उद्योग, वो इससे जुड़े हुए हैं। जैसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह कहा कि जो इसकी इंडस्ट्री में करीब 1,30,000 करोड़ रुपए और 600 टेक्सटाइल के जो क्लस्टर्स हैं, वो पूरे देश में खुले हुए हैं। तो आप इसी से खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आपने खुद कहा कि पटोला से लेकर बनारस की साड़ियों तक, बनारस के जो हथकरघा उद्योग हैं, वहां से लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्वोत्तर तक इसकी जड़ें फैली हुई हैं। तो एक तो इसका जो आर्थिक आस्पेक्ट है, आर्थिक जो इसका पहलू है, वो काफी विस्तृत है, पूरे देश में इसकी फुटप्रिंट है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। आज हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जब मना रहे हैं, 2015 में जैसे आपने बताया शुरू हुआ था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसको और आगे ले जाएं और जिस तरह से लोग इसमें जुड़े हुए हैं उससे और ज्यादा जुड़ें। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आपको याद होगा, कुछ वर्षों पहले सरकार ने शुरू किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिले से एक उत्पाद की जो नीति शुरू की थी, वो उस इनिशिएटिव को, उस प्रयोग को भी इसको पॉपुलर बनाने की जरूरत है, क्योंकि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कुछ ना कुछ एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कि हथकरघा से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात है कि इसमें आप देखिए कि पूंजी की जहां तक बात होती है, बहुत ज्यादा इसमें पूंजी नहीं लगती और यहां पर गांव के लेवल पर लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़े उद्योग की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं। जैसे नामी इसका हैंडलूम है, हथकरघा है, हाथ से चलाई जाने वाली मशीनें। और जैसे आपने कहा कि ये हमारी हेरिटेज है, हमारी विरासत है, तो मुझे याद पड़ता है कि आप अगर को देख लीजिए संत कबीर को, वो भी एक बुनकर थे, जुलाहे थे, और वहां से हमारी विरासत यहां तक आ गई है। तो आर्थिक रूप से ये बहुत, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत ज्यादा इसकी महत्व है और कम लागत में बहुत ज्यादा लोगों को ये रोजगार देने में सक्षम भी है। और सिर्फ खेत की बात ये कि उसका जितना पोटेंशियल है वो उतना देश में रियलाइज नहीं हो पाया अभी तक। तो जैसा प्रधानमंत्री सुबह कह भी रहे थे कि जो 1,30,000 करोड़ रुपए की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहां तक पहुंच गई है और 600 टेक्सटाइल क्लस्टर जो देश में खुले हुए हैं, इनको और ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा इसके ऊपर काम होना चाहिए और ज्यादा लोगों में इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और ये जिससे कि नई ऊंचाइयों को, नए आयामों को छुए और नए नए रोजगार के अवसर पैदा करें कम खर्चे में। और आपने एक और बात कही शुरू में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो वो भी इससे आर्थिक पहलू से ही जुड़ा हुआ है।
जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि महिला बुनकर खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्योग की निरंतरता और सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में इस उद्योग में 70% से अधिक महिलाएं हैं, और अगर इसे दूसरे तरीके से देखें तो हथकरघा क्षेत्र महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण भी प्रदान करता है।
बिल्कुल ठीक अनुभव जी, जैसे आपने बताया 70% महिलाएं हैं अगर, तो इसमें महिलाओं के हाथ में आप देखिए कि जो ये गुण है हैंडलूम के क्षेत्र में और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के क्षेत्र में भी, जो हथकरघा वाले उत्पाद हैं उसमें काफी दूर तक और काफी विस्तृत तरीके से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और जैसे हम देखते हैं, अगर 70% अगर इसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो उससे आप देखिए एम्पावरमेंट कितना होता है। अगर घर में एक महिला के हाथ में अगर आमदनी आए और महिला कमाने लगे, तो पूरे एक घर का, एक यूनिट का पूरा आर्थिक माहौल बदल जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण इसके द्वारा किया जाए, और हथकरघा उद्योग इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी निभा सकता है। मैंने बताया कि मशीन मेड जो कपड़ा है, जो पावर लूम से जो बनता है, ये हम हैंडलूम की बात कर रहे हैं, तो उसमें मशीनी प्रयोग से हटके अगर हम हाथ के प्रयोग से कर रहे हैं तो इसमें महिलाएं काफी इसमें अच्छी कारीगर साबित हुई हैं और कई सारी ऊंचाइयों को भी छुआ है। अगर आप देखें राजस्थान में बहुत सारी महिलाएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं और इसमें तो एक दो केस स्टडीज भी हैं जो आजकल आधुनिक जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें महिलाओं ने हैंडलूम इंडस्ट्री और या हथकरघा के क्षेत्र में काफी कमाल हासिल किया है और यही भारत के अपने देश के लेवल पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त की है महिलाओं ने, जो महिला डिजाइनर है, जो महिला बुनकर है। और एक महिला बुनकर अगर आप देखें अनुभव जी, अगर उनको आप एक एम्पावरमेंट देते हैं, उनको एक रोजगार का अवसर देते हैं, उनको आप प्रशिक्षित करते हैं हथकरघा उद्योग में, तो उनके साथ 10 और महिलाएं उसी गांव की जुड़ती हैं और उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 600 टेक्सटाइल क्लस्टर जो हैं वो क्लस्टर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हैं तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बिना ज्यादा दूरी तय किए हुए अपने घर की देखभाल करते हुए वहां पर जाकर पूरे दिन या जब भी समय मिले इसमें काम कर सकती हैं और अपने परिवार का और अपने समाज का भी इसमें प्रगति में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। और महिलाओं के सशक्तिकरण में मैं समझता हूँ हैंडलूम इंडस्ट्री या हथकरघा उद्योग काफी अच्छी एक भूमिका निभा सकता है।
आप अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो आज हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास के बारे में बहुत जागरूकता हो गई है और इस पर काफी जोर दिया जा रहा है। अब साइकिलिंग, स्लो फैशन जैसी अवधारणाओं को अपनाया जा रहा है। इस वर्ष हथकरघा दिवस की थीम भी सतत फैशन के लिए हथकरघा ही है। तो हैंडलूम उद्योग ज्यादातर प्राकृतिक फाइबर इस्तेमाल करता है, पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है जिससे पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और सतत विकास की जो हम बात कर रहे हैं, जो इवन यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे इसकी अभी पूरी बात हो रही है, उस लिहाज से भी ये जो सेक्टर है बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें ये एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत विकास की बात आपने कही, तो आप देखिए जो 7 अगस्त को जो हम मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो इसी दिन 1905 में आपने शुरू में कहा था कि स्वदेशी मूवमेंट जो आंदोलन जो लॉन्च हुआ था कोलकाता में, सबसे अग्रणी भूमिका निभाई थी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने। तो इस स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था वो इसीलिए शुरू हुआ था कि जो हमारे उत्पाद हैं, जो गुड्स हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए और जो इम्पोर्ट्स हैं, जो हम आयात करते हैं, उनसे हमें आजादी मिले। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका कौन निभा सकता है? हैंडलूम्स। इसमें हथकरघा उद्योग बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। ये मैं समझता हूँ कि स्वदेशी आंदोलन जो था उस हमारे स्वाधीनता आंदोलन में भी, जो हमें ब्रिटिश राज से मुक्ति दिलाई, उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन ने दिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें जो फाइबर यूज होता है, जो धागे यूज होते हैं हथकरघा उद्योग में, वो बिल्कुल लोकली मेड है। और प्रधानमंत्री ने जैसे आज कहा भी वोकल फॉर लोकल, की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। जो ये बात है इसमें बहुत दम है, मैं समझता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सतत विकास, जैसे आपने कहा कि इसमें हैंडलूम का जो इंडस्ट्री है, जो हैंडलूम की उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, वो इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि हर चीज आप लोकल लेवल पर आप उसको सोर्स कर सकते हैं। देखिए आजकल जूट के फाइबर का बहुत उपयोग होता है, उसी तरह कपास का, जो ट्रेडिशनल कॉटन क्लॉथिंग जो कहते हैं, कपास के सूती कपड़े, और हमारे देश की जिस तरह जलवायु है उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हमारे देश के उत्पाद हैं, इंडिजिनस जो उत्पाद हैं उसको हम बढ़ावा दें, और जो हमारे ऊपर आयातित जो फाइबर्स हैं, जो धागे हैं, उनकी जरूरत हमें ना पड़े। दूसरी तरफ से ये भी रहता है कि बहुत ज्यादा इसका प्रयोग बड़े आराम से किया जा सकता है।
आपने प्रधानमंत्री की आज बात कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समारोह में भाग लिया जहां उन्होंने कपड़ा शिल्प का भंडार, एक ई पोर्टल लॉन्च किया, और उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का प्रयास है कि टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी जो परंपराएं हैं वे न सिर्फ जिंदा रहें बल्कि नए अवतार में दुनिया को आकर्षित करें। तो आज के फैशन ग्राहकों की बदलती मांगों को पूरा करने के लिए हर उद्योग में नवाचार या कहें कि इनोवेशन की आवश्यकता है, और विशेष रूप से हथकरघा जैसे उद्योग के लिए तो ये और भी जरूरी है क्योंकि ये फैशन से जुड़ा है। तो इस संदर्भ में ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार और निजी उद्यम क्या कदम उठा रहे हैं और कैसे कदम उठा सकते हैं?
प्रधानमंत्री ने जेम पोर्टल की बात कही आज सुबह, जो कि उन्होंने कहा कि हैंडलूम इंडस्ट्री जो है उद्योग, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार एक तो लोन्स भी दे रही है, जिस तरह से मुद्रा लोन वगैरह दे रही थी सरकार, तो ये लोन भी दे रखी है जिसमें कि कोई गारंटी नहीं देनी, और जो रॉ मटेरियल जो है वो हैंडलूम जो बुनकर हैं उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर, काफी बचत वाले कीमतों पर उनको दिया जाएगा। और जो जेम पोर्टल, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स को जेम के ऊपर, उस पोर्टल के ऊपर सीधा बेच सकते हैं, और जितने एमएसएमई इसके साथ लघु उद्योग हैं वो इसके साथ एसोसिएट होंगे जेम पोर्टल के साथ, और उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और अभी 1,75,000 एमएसएमईज हैं जो एसोसिएटेड हैं इसके साथ, जेम पोर्टल के साथ। और दूसरा, प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जो एकता मॉल, एक सरकार काम कर रही है इसके ऊपर कि वो पूरे देश भर में एकता मॉल बने, जिससे कि हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं, हथकरघा के जो उत्पाद हैं, वो सारे के सारे राज्यों में उपलब्ध हो सके और उनकी मार्केटिंग हो सके। और जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिले का एक उत्पाद वाला जो इनिशिएटिव सरकार ने शुरू किया था, उससे भी जो विभिन्न जिले हैं उनके प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करने में एकता मॉल से मदद मिलेगी। और उसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो ई पोर्टल है भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष, ये है एक टेक्सटाइल और क्राफ्ट, इसमें दोनों सम्मिलित हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमारे देश का जो बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है एनआईएफटी का, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर जो काम करता है, उसमें वो इसके ऊपर काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इसकी रीच, इसकी पहुंच जितनी ज्यादा बढ़ सके उतना ज्यादा इसको न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में एक मार्केट मिलेगी। और काफी बड़े पैमाने पर, जैसे सरकार ने बड़े गंभीर इसमें प्रयास किए हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए 2015 के बाद से, तो मैं समझता हूँ जरूर ये जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा कि ये रंग जरूर लाएगा, फलीभूत जरूर होंगे सरकार के जो ये प्रयास हैं। और जहां तक इसकी अवेयरनेस की बात है तो उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां तक सरकार प्रश्न है तो सरकार जितने भी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े जो भी इकाइयां हैं उनको सरकार रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में, कच्चा माल प्राप्त कराने में भरसक प्रयास करेगी। तो मैं समझता हूँ एक ही अच्छी पहल है जो प्रधानमंत्री ने आज स्वयं इसको इतनी महत्वपूर्ण ढंग से इसको पेश किया देश के सामने, और जो सरकार की कमिटमेंट भी है कि जो इनकी लोकप्रियता बढ़ाई जाए लोकल प्रोडक्ट्स की, वो उसको एक, मैं समझता हूँ जब सरकार में शीर्ष स्तर से ये प्रयास हो, इस प्रयास का फल जरूर मिलना चाहिए।
जब बात वोकल फॉर लोकल की आती है, जो कि प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, उन्होंने आज कहा भी कि अब जो ये नारा है ये एक जन आंदोलन बन गया है, और इसके साथ अगर हम सरकार की स्किलिंग इंडिया जैसी स्कीम्स को बढ़ावा देने की बात करें तो हैंडलूम उद्योग को बेहतर बनाने में ये वोकल फॉर लोकल और स्किलिंग इंडिया स्कीम्स कितनी मदद कर सकती है, और दूसरी तरफ हथकरघा सेक्टर जो है वो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की सफलता में कैसे योगदान कर सकता है।
जैसे हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की जो बात कर रहे थे, और दूसरी बात जो हम कर रहे थे कि इसमें बहुत कम लागत लगती है, आप बहुत कम लागत से उद्योग आप शुरू कर सकते हैं, और जो हमारे देश की विरासत है जो पूरे विश्व में जिसका लोहा माना जाता है, उसको आगे ले जाने में अगर हमारे पास अच्छे कारीगर हों, हम उनकी स्किल्स को, उनके जो कुशलता है उसको और पैनी धार दे सकें, और वोकल फॉर लोकल का मतलब ये कि जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में लोगों में अवधारणा ऐसी हो कि पता रहे कि हाँ ये चीज तो, ये कच्चा माल और ये फाइबर, ये धागे तो हमारे देश में ही उपलब्ध हैं, तो हमें बाहर से लाने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। कई साल पहले जो चीनी बेचम था उससे बहुत प्रभावित थे वहां के बुनकर, हमारे देश की लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो इस तरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरा, इससे जैसे आपने कहा आत्मनिर्भरता बिल्कुल बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता तो हमें बाहर की तरफ मुंह उठाने की जरूरत ही नहीं है, और हम इन सबको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर के देशों को निर्यात कर सकते हैं, ये भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ाने में सहायक होगी। तो पूरे तौर पर एक इकोनॉमिक सेक्टर में जिसको एक सॉफ्ट इंडस्ट्री की तरह अगर हैंडलूम को देखा जाए, और भारत इसको एक सॉफ्ट स्किल की तरह अगर पूरे विश्व में इसको अगर प्रमोट कर सके तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी। और इसमें जो स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, अपस्किलिंग के जो कुशलता हमारे कारीगरों में होनी चाहिए, अगर सरकार उसमें योगदान दे रही है इस तरह के इंस्टीट्यूट्स खोल के, और हमारा जैसे एनआईएफटी है वो तो विश्व भर में विख्यात है, मैं समझता हूँ कि इसमें तो बिल्कुल इकोनॉमिक आस्पेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, और इस तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए ये बड़े सकारात्मक प्रोग्राम सिद्ध होंगे, स्किल इंडिया भी और मेक इन इंडिया भी, जो देश को सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाए।
विनय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रमुख योजनाओं और पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक विनय कुमार, और कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289 4044।